आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 9। मंगलेश डबराल जी की लिखी हुई कविता संगतकार। ठीक है, तो पहले कविता पढ़ने से पहले हम लेखक के जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे। आइए लेखक का जीवन परिचय पढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर 52 पर आ जाइए। तो यहाँ पेज नंबर 52 पे लेखक के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, मैं पढ़ती हूँ। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो डबराल जी का जन्म 1948 यानी 1948 में हुआ था। कहाँ? उत्तरांचल, जिसे आज हम उत्तराखंड कहते हैं, उसके टिहरी गढ़वाल के गांव काफल पानी में। इन्होंने जो अपनी पढ़ाई, जो अपनी शिक्षा पूरी की, वो की इन्होंने देहरादून में। और उसके बाद इन्होंने हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास जैसे अखबारों में काम भी किया। ठीक है, फिर ये भोपाल के भारत भवन से जो पूर्व ग्रह प्रकाशित होता है उसके संपादक बने, सहायक संपादक बने। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अमृत प्रभात में भी इन्होंने नौकरी की। और उसके बाद 1983 यानी 1983 में जनसत्ता अखबार, जो कि काफी प्रमुख और प्रसिद्ध अखबार है, उसमें इन्होंने संपादक का पद संभाला। फिर सहारा समय में इन्होंने संपादन का कार्य किया और अब आजकल वे क्या कर रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट से वो जुड़े हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि उनके पास साहित्य का, संपादन कार्य का कितना ज्यादा अनुभव है ना। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। तो जो मंगलेश जी हैं, इनके मुख्य काव्य संग्रह कौन से हैं, जो इनकी रचनाएं, जो इनकी कविताएं हैं, वो 4 काव्य संग्रहों में प्रकाशित हैं, जिनके नाम हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पहल सम्मान मिला है और इनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि, कैसे प्रसिद्ध है, अनुवादक के रूप में भी, यानी लिखते तो है ही, अनुवादन कार्य भी करते हैं, जैसे किसी और भाषा से, अंग्रेजी से हिंदी में उसे ट्रांसलेट कर देना। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। यानी इन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है। ये हिंदी में तो लिखते ही है, उसका अनुवाद कार्य भी करते हैं दूसरी भाषाओं में। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे ये प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी। ठीक है, जो पूंजीवादी, जो सामंती प्रवृत्ति है, उसके लिए ये विरोधी है, लेकिन इस विरोध को ये बहुत शोर से, चिल्लाकर ना करके, शांति से, एक स्वप्न के रूप में करते हैं कि वो कैसा समाज असल में चाहते हैं। सौंदर्य बोध बहुत ही सूक्ष्म है, यानी बहुत ही बारीकी से अपनी सुंदरता, अपनी रचना की व्यक्त कर देते हैं। और भाषा बहुत ही पारदर्शी है, यानी जैसा लिखते हैं वैसा ही समझ में आता है। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 53। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कविता के बारे में जानकारी दी गई है, वो पढ़ के बताती हूँ। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। तो ये कविता किसके ऊपर लिखी गई है? जो गायक होते हैं, है ना, कहीं गाने के लिए जाते हैं, उनके आसपास आपने देखा ना बहुत से लोग होते हैं जो या तो साथ में सुर मिला रहे होते हैं या कोई वाद्य यंत्र, कोई बाजा बजा रहे होते हैं या उनके गाने की तैयारी करवा रहे होते हैं। तो ये जो छुपे हुए सहायक लोग होते हैं इनके बारे में कविता लिखी है कि कोई भी दृश्य माध्यम यानी जो चीज हम देख रहे हैं, जैसे नाटक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, ऐसी चीजों में जो मुख्य करता होता है उसे तो हम सब देख रहे होते हैं, है ना। नायक को हम सब जान रहे होते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति कितना अच्छा नाच रहा है, ये व्यक्ति कितना अच्छा गा रहा है, ये नाटक में कितना अच्छा अभिनय कर रहा है। लेकिन मुख्य किरदारों के अलावा जो सहायक किरदार होते हैं, साइड एक्टर्स होते हैं, उनको भी महत्व देना चाहिए। कविता हमें उनके प्रति संवेदनशीलता हमें विकसित करती है कि उनका भी कितना महत्व होता है और अगर वो मुख्य भूमिका में नहीं है या पर्दे के सामने नहीं आ रहे हैं तो ये उनकी कोई कमजोरी नहीं है, मानवीयता है कि वो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं और एक सहायक के रूप में, एक समर्थक के रूप में कार्य करते हैं, वो दूसरों का सपोर्ट, सहारा बने रहते हैं ना। अगर वो नहीं होंगे, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा तो जो मुख्य गायक या मुख्य अभिनयकर्ता है वो भी अपनी प्रस्तुति बेहतर तरीके से नहीं दे पाएगा। उनका पूरा प्रस्तुतिकरण इन जो सहायक कलाकार होते हैं इन पर ही निर्भर करता है। तो जब ये कविता हम पढ़ेंगे ना तो इसमें हमें कवि की संगीत की सूक्ष्म समझ भी समझ में आएगी कि उनको संगीत की कितनी बारीक से बारीक बातें पता है, कितनी जानकारी है। साथ ही कविता को ऐसा प्रस्तुत किया है कि लगता है कि जो उसके जो भी दृश्य हैं वो सारे हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कविता शुरू करेंगे। पेज नंबर 54 पर आइए। तो यहाँ पोयम शुरू करते हैं। कविता आपकी, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। तो देखिए इसमें हम संगतकार के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि जब भी कोई संगीत का आयोजन हो रहा है, कोई गायक है जो मुख्य गायक है उसके साथ सहायक लोग भी होंगे ना, जो साथ में गा रहे होंगे, तो पीछे से कोरस दे रहे होंगे या कुछ बजा रहे होंगे, वो जो संगत देने वाले लोग होते हैं उन्हीं के बारे में ये है कि उन पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है ना, कि वो असल में कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसा है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों की नजर मुख्य गायक पर ही होती है, वो हमारे लिए गुमनाम चेहरा सा होता है, तो लोग उसके बारे में बहुत सी अटकलें लगाते हैं, कई अंदाजे लगाते हैं कि ये कौन है। जैसे मुख्य गायक की जो प्रसिद्धि है उस पर हम खोए रहते हैं, मुख्य गायक को पहचानते हैं लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं उनसे हमें कोई सरोकार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और ना ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये संगतकार कौन है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो अंदाजे जरूर लगाने लगते हैं, जैसे मुख्य गायक बहुत ही चट्टान जैसे बहुत तेज स्वर में गा रहा है और पीछे से एक सुंदर आवाज, यानी पीछे जो सहायक कलाकार है वो भी बहुत अच्छा गाता है लेकिन क्योंकि वो मुख्य भूमिका में नहीं है इसलिए कहीं ना कहीं उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही है और शायद वो नया है अभी इसीलिए भी। तो लोग विचार करते हैं कि या तो ये गायक का छोटा भाई है या उसका कोई शिष्य है, है ना, यानी गायक ने उसे सिखाया है, या हो सकता है कि कोई रिश्तेदार पैदल चलकर आया हो और उसका साथ देने लगा हो। आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटता हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इसमें बता रहे हैं कि बहुत समय से, सदियों से, कई वर्षों से यही परंपरा रही है कि जो संगतकार होते हैं, सहायक कलाकार होते हैं, वो मुख्य गायक के सुर में सुर मिलाते हैं, है ना। जैसा वो गाते हैं वैसा ही उनका वो साथ देते हैं उनके, या फिर कोरस गाते हैं उनके पीछे। लेकिन मुख्य गायक की आवाज इतनी तेज होती है कि कहीं ना कहीं संगतकार की आवाज अच्छी होते हुए भी पीछे दब जाती है ना। संगतकार की आवाज कितनी भी अच्छी हो लेकिन पीछे दब जाती है। फिर भी जो संगतकार है वो हर पल हर समय अपनी भूमिका को, अपने किरदार को बहुत ही ईमानदारी से निभा रहा होता है। जैसे जब जो मुख्य गायक है, क्या लिखा है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी जब अंतरा गा रहा होता है वहां पे बहुत मुश्किल तान लेनी पड़ती है, तो उन अलापों में, उन तानों में कहीं ना कहीं मुख्य गायक खो जाता है, सुर से भटकने लगता है। तो ऐसे समय में कौन उसकी मदद करता है? संगतकार उसे वापस से सुर में ले आता है। ये बात किसी को पता नहीं चलती, सुनने वाले को ये बातें पता नहीं चलती हैं, उन्हें मुख्य गायक की भूमिका ही दिखाई दे रही होती है। लेकिन असल में जब मुश्किल स्वरों में, ऊंची तानों में या अलाप लेते समय गायक भटकने लगता है तो उनका साथ देते हैं संगतकार। संगतकार ही उसे वापस सही स्थान पर लाते हैं और बताते हैं कि कहाँ पे आप गा रहे थे, कौन से सुर में आपको गाना है, क्योंकि उसी की आवाज सुन के गायक वापस से अपने पुराने गाने में वापस आ जाता है। उसकी भूमिका की कैसे, क्या उदाहरण देकर समझाया है कवि ने, कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, है ना। जैसे कोई यात्री है, वो जा रहा है, उसका सामान पीछे रह गया है, और कोई व्यक्ति बटोर बटोर के वो सामान उसे देने आ रहा है कि आपका ये चीज, आपका सामान पीछे छूट गया था, हम आपको लौटाने आए हैं। और वो गायक को वो दिन भी याद दिलाता है जब मुख्य गायक स्वयं भी नौसिखिया था। नौसिखिया यानी जिसने कोई चीज नई नई सीखी हो। तो एक तो वो उसका साथ देता है, उसका सहारा बन के चलता है कि तुम्हारे जो भी सामान, जो चीजें छूट गई है मैं तुम्हें देता रहूंगा, है ना, वरना अकेले तुम कितनी दूर तक जा पाओगे, तुम कहीं खो जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। और उसी को देख के मुख्य गायक को वो दिन भी याद आते हैं कि कहीं ना कहीं बचपन में मैं भी ऐसा ही हुआ करता था, मैं भी नौसिखिया था, मैंने नया नया सीखा था और मैं लोगों का साथ दिया करता था, है ना। तो ये जो चीज है कि मुख्य गायक को नौसिखियापन होना अपना याद आता रहता है, तो इससे वो जमीन से भी जुड़ा रहता है ना, उसमें अहंकार नहीं पनप पाता ये सोचकर कि ये जो स्थिति आज इसकी है, कभी ना कभी ये स्थिति मेरी भी थी। आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को डाढ़स बनाता संगीतकार का सुर, तभी मुख्य गायक को ढाड़स बनाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। यानी जब वो तार सप्तक गाता है ना, और उसका गला बैठने लगता है, आवाज कहीं ना कहीं धीमी होने लगती है, आवाज से राख जैसा, यानी आवाज अपने अंतिम चरण पे पहुंचने लगती है, प्रेरणा जो हिम्मत उसे मिली होती है वो अस्त होने लगता है, वो थक जाता है, गला बैठ जाता है, हिम्मत जवाब दे जाती है मुख्य गायक की, तो उसे सहारा कौन देता है? संगतकार, अपने स्वर से। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, कोई मुख्य गायक है ना, वो स्टेज पे मंच पर प्रस्तुतिकरण कर रहा है अपने गायन का, और चार पांच गाने के बाद कहीं ना कहीं उसके गले में दिक्कत होती है, बैठने लगता है वो गला, वो थकने लगता है, तो वो बीच में रुक जाता है, और उतने समय गाने के बोल, गाने के स्वर कौन संभाल लेता है? संगतकार, जो सहायक कलाकार होता है, उतने समय के लिए वो संभाल लेता है। और ऐसे पूरी प्रस्तुतिकरण अच्छा तो बन जाता है, लेकिन इसकी जो, इसका जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? मुख्य गायक को, कि वाह क्या गाया है। लेकिन जो सहायक कलाकार होता है वो मुख्य गायक की हिम्मत को टूटने नहीं देता, उसका सहारा बना रहता है हमेशा। ठीक है, यही इन पंक्तियों में बताया गया है। और अगर आप देखेंगे ना कि जहां पे पंक्तियां आई हैं कि तार सप्तक में गला बैठने लगता है, या अलाप लेते समय ऊंची ताने लेते हुए कठिन ताने लेते हुए कवि खोने लगता है। तो ये सारी चीजों से क्या पता चल रहा है हमें इन पंक्तियों से कि जो कवि है ना उन्हें भी संगीत की काफी समझ है, क्योंकि उन्होंने पूरी रचना में जहां व्यक्तियों के भावों को उनके कर्तव्यों को दिखाया है उसके साथ ही संगीत की बारीकियों का वर्णन भी जगह जगह किया है। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गा चुका राग। यानी अब वो और बता रहे हैं कि जो संगतकार है, जो सहायक कलाकार है, उसकी और क्या भूमिका होती है, वो और क्या क्या कार्य करता है, ये वो बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि कभी कभी वो ऐसे ही साथ दे देता है, यानी ऐसे ही गाने लगता है मुख्य गायक के साथ, ताकि जो मुख्य गायक है उसको ये महसूस ना हो कि वो अकेला गा रहा है, अकेला ही कहीं चल रहा है। आपको किसी का साथ मिलता है ना तो आप ज्यादा दूर तक जा पाते हैं, अकेले इतनी दूर तक नहीं चल पाते इतना किसी के साथ में चल पाते हैं, यही सोचकर संगतकार मुख्य गायक का साथ देने लगता है कि इसे अकेला महसूस ना हो तो मैं इसके साथ में थोड़ा सा गा दूं। और उसे ये भी कभी कभी याद दिलवाता है कि जो राग हम गा चुके हैं उसे हम दोबारा गा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बार गा दिया तो अब लोगों को पसंद नहीं आएगा, अगर एक बार लोगों को पसंद आया था तो दोबारा भी उसकी तारीफ हो सकती है, हमें फिर से प्रयत्न करना चाहिए और फिर से वही चीजें गाने में कोई बुराई नहीं है। यानी आप हर पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपको संगतकार की भूमिका समझ में आती जाएगी कि क्या क्या चीजें वो करता है और हर भूमिका को, अपने हर काम को, कर्तव्य को कितनी ईमानदारी से तो निभाता ही है। साथ ही वो यह भी बताता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा सहारा बनके, तुम्हारी हिम्मत बनके हर समय हर पल खड़ा रहूंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अंतिम पैराग्राफ पे, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 55 पर। ठीक है, पेज नंबर 55 पे लास्ट पैराग्राफ पोयम का। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब वो क्या बता रहे हैं, अंतिम चरण की तरफ आते हैं। कोई भी गायन प्रस्तुति या कोई भी चीज की जो अंतिम प्रस्तुति हो रही होती है उसके अंतिम चरण में क्या होता है कि जो संगतकार है उसकी आवाज दबी हुई रहती है, वो मुख्य कलाकार से कभी भी तेज नहीं गाता है, है ना, उसके पीछे ही गाते हैं, उसके उसका साथ दे देते हैं, कोरस कर देते हैं, लेकिन आवाज को अपनी धीरे रखते हैं, मुख्य गायक से तेज कभी नहीं गाते। तो ये वो कह रहे हैं कि जो उसकी आवाज में एक हिचक है कि वो तेज नहीं गा सकता और उसकी एक कोशिश है कि वो अपने स्वर को मुख्य गायक से ऊंचा नहीं उठा रहा है, उसको थोड़ा नीचा करके ही गा रहा है, ये क्या है, लोग इसे उसकी कमजोरी समझ सकते हैं, है ना, पर उसे हमें उसकी विफलता यानी उसकी हार, उसकी कमजोरी ये नहीं समझना चाहिए, हमें उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। वो उसकी कमजोरी नहीं है, वो असल में मुख्य गायक की जो आवाज है उसको प्रखर बनाना चाहता है, उसको प्रसिद्ध बनाना चाहता है और इसके लिए वो त्याग करता है। तो ये मनुष्यता, इंसानियत हुई कि दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए वो अपनी आवाज को जानबूझकर दबा रहा है और अपने आप को पीछे क्यों रख रहा है, ताकि दूसरा व्यक्ति जो मुख्य गायक है वो सामने से आगे निकल पाए। ठीक है, तो पूरी कविता में एक संगतकार की भूमिका हमें समझ में आ गई कि सहायक कलाकार कैसे मदद करता है। अब कविता तो संगतकार के बारे में है ना, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि समाज में हर उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जो सहारे की भूमिका में होता है ना। क्योंकि अगर हम विश्व के किसी भी क्षेत्र की बात करें, कहीं पे भी, तो जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो उसके अकेले की सफलता नहीं होती है, उसकी सफलता में कई लोगों का जो योगदान होता है वो होता है। जैसे आप फिल्मी किसी अभिनेता के बारे में ले लीजिए, किसी खिलाड़ी के बारे में जैसे क्रिकेटर के बारे में देख लीजिए, किसी नेता के बारे में देख लीजिए जो सफलता के शिखर पर पहुंच गए हैं, तो उन्होंने ये जो सफलता हासिल की है, जो प्रसिद्धि हासिल की है, वो उनके अकेले की मेहनत नहीं है। कई लोग उनसे जुड़े होंगे जो उनके परिवार से या उनके दोस्त होंगे या आसपास जान पहचान वाले होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी, अपने आप को दबाया होगा या त्याग किया होगा, सहारा दिया होगा, उनकी हिम्मत बने होंगे जिससे वो इस स्तर पर पहुंच पाए हैं, आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन जो हम लोग हैं, आम लोग हैं, वो उनके बारे में नहीं जानते, है ना। हम किसे जानते हैं? मुख्य, जो मुख्य नायक है उसे, कि ये मुख्य अभिनेता बहुत अच्छा है, ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ये नेता बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनकी सफलता के रास्ते में किस किसने अपनी मेहनत का पसीना बहाया है, किस किसने उनकी सहायता करी है, किसने जब वो कमजोर पड़ रहे थे तो उन्हें हिम्मत दी है, वो हमें नहीं पता होता है। जैसे यदि आपके अच्छे नंबर आए, आप अपना उदाहरण देखिए, आपके किसी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो जो आपके शिक्षक होते हैं वो आपकी तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, है ना, ऐसा किया वैसा किया। आपके दोस्त भी कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे नंबर है। सुनने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो आपकी ही तारीफ करता है, और आप एक नायक की मुख्य भूमिका में आ जाते हैं कि इस बच्चे के बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन आपकी जो उपलब्धि होती है ना, चाहे छोटी उपलब्धि हो चाहे बड़ी, कोई भी जो हमारी उपलब्धि होती है उसमें हमारे अकेले का हाथ नहीं होता है ना। जैसे अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके माता पिता ने बहुत त्याग किया है आपके लिए, है ना, मेहनत करी आपके लिए कि आप पढ़ाई कर सकें अच्छे से, आपकी पुस्तकों का इंतजाम किया, आपके स्कूल की फीस का इंतजाम किया। और जब एग्जाम में आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी माता अच्छा अच्छा खाना बना के देती है ना, कि मेरे बच्चे को पढ़ाई में मन लग सके, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, और घर के काम खुद ही संभालने लगते हैं कि हम देख लेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई करो। तो अगर आप कुछ कर पाते हैं तो उसमें आपसे ज्यादा आपके जो आसपास सहायक भूमिका में लोग होते हैं, सहारे जो आपको प्रदान करते हैं या आपकी जो हिम्मत बनते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऐसे लोगों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम किसी उच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं, किसी ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में हमें उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। ये इंसानियत होती है कि जहां वो त्याग करके खुद को पीछे रखकर हमारा सहारा बन रहे हैं, हमें हिम्मत दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और सिर्फ देखना ही नहीं चाहते, हमें आगे बढ़ाकर उन्हें खुशी भी मिलती है। तो ऐसे लोगों का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, उनको सम्मान की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से देखने चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, उनको उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो ही हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारी स्थिति में, तो हमें अपने साथ तो बिल्कुल ही नहीं भूलना, लेकिन जो दूसरे लोग भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही किसी ने उपलब्धि प्राप्त की है, बड़ी कोई सफलता मिली है किसी को, या कोई बहुत ही महान या प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो हमें उसके जो सहायक लोग हैं, जो सहारा देने वाले आसपास के लोग हैं, उनके बारे में भी जानना चाहिए, उन्हें गुमनाम नहीं रखना चाहिए। और अगर हम उन्हें नहीं जान पाते हैं या जान लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अनदेखा कर दें कि इस व्यक्ति से क्या, हमें उस व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम मुख्य प्रस्तुतिकर्ता को दे रहे हैं। तो अगर आप आगे से कोई नृत्य प्रस्तुति या कोई गायन की प्रस्तुति मंच पर देखने जाते हैं, या कोई नाटक देखने जाते हैं, तो इसके अलावा आपको जो वहां और लोग मौजूद होंगे उनके प्रति भी संवेदनशीलता रखनी चाहिए, उनके प्रति भी एक सम्मान की भावना होनी चाहिए। आप जानने का प्रयास करें कि वो भी कितनी मेहनत करते हैं, सब कुछ कितना अच्छा कर रहे हैं, तब जाके एक अच्छे से चीज हमारे सामने आ पाती है। जैसे अगर आप फिल्में देखते हैं, है ना, तो हमें फिल्म में क्या दिख रहा होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, दो चार उनके आसपास के लोग होते हैं, और उन्हीं के आधार पे हम पूरी पिक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सब लोग तो वो हैं जो पर्दे पर दिख रहे हैं, लेकिन कई किरदार इनसे भी अहम होते हैं जो अपनी भूमिका पर्दे के पीछे से निभा रहे होते हैं ना। जैसे फिल्म को बनाने वाला, उनका निर्माता, डायरेक्टर, उनका निर्देशक, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो होते हैं, निर्माता निर्देशक, और कैमरा पर्सन, कैमरा पर्सन तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण काम करता है कि जो भी चीज हम देख रहे हैं, जितने भी शॉट्स लिए गए हैं, वो सब कैमरे में कैद तो कैमरा पर्सन ने किए ना, उसे पता है कि यहाँ से कैमरा ऐसा लगेगा तो अच्छा होगा, ऐसा होगा तो अच्छा। फिर लाइट की व्यवस्था की जाती है, अभिनेता और अभिनेत्रियों के को सजाने वाले व्यक्ति, उनका मेकअप करवाने वाले लोग होते हैं, उन्हें खाना देने वाले लोग होते हैं, सेट पे लाइट लगाने वाले होते हैं, इनको डांस सिखाने वाले लोग होते हैं, है ना, और सफाई करने वाले लोग होते हैं, और आपको जो चीजें चाहिए, जो प्रॉपर्टीज, जो कुछ भी जो फिल्म बनाने के लिए चीजें जरूरत है, उनको देने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे कोई भी जो लोग होते हैं जिनके बारे में आखिर में पिक्चर के नाम तो लिखा हुआ आता है, लेकिन उस नाम को पढ़ने की जहमत कौन उठाता है? आपने देखा, आप कोई पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर खत्म हो गई, उसके लास्ट में नाम आते जा रहे हैं, ये डायरेक्टर है, ये कैमरा पर्सन है, ये लाइट मैन है, ये स्पॉट बॉय है, तो उसे कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता हम में से, है ना, क्योंकि हम उनकी भूमिका को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मुख्य किरदारों के अलावा उनकी भी एक बहुत ही अहम भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनका बहुत ही मुख्य योगदान होता है, उनके बिना कहीं ना कहीं वो पिक्चर, फिल्म वो बनी ना पाए। ऐसे ही समाज में भी हमें हमेशा ये समझ के चलना चाहिए कि अगर हम कुछ हासिल कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत लोग हैं, अगर दूसरा व्यक्ति कुछ हासिल कर रहा है तो उसके भी जो सहायक लोग हैं उन्हें हमें महत्व देना चाहिए, उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से पूरी कविता पढ़ रही हूँ, हालांकि समझा दी है लेकिन फिर से पढ़ दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और क्योंकि भाषा जो है वो काफी सरल है ना, जैसा लिखा है वैसे ही अर्थ इसमें समझ में आ रहा है, तो अगर आप दो तीन बार भी कविता पढ़ लेंगे तो जैसे का तैसा आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कवि ने लिखा कुछ है समझ में कुछ आ रहा है, बहुत ही सीधा सरल लिखते चले गए हैं बिबराल जी। तो अब हम पढ़ते हैं कविता संगतकार, फिर से एक बार रीडिंग कर दे रही हूँ, मेरे साथ साथ रीडिंग कीजिएगा, जिससे कविता में क्या क्या बातें बताई गई हैं वो आपको अपने आप ही समझ में आने लगेंगी और परीक्षा के लिए ये कविता बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं संगतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सिखिया था, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाणस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे संगतकार की भूमिकाएं बताई गई हैं कि वो क्या क्या काम करता है, और ये बताई गई है कि जो वो अपनी आवाज ऊंची नहीं उठाता या तेज स्वर नहीं लेता है वो उसकी कोई हार नहीं है, विफलता नहीं है, उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी मनुष्यता है, एक इंसानियत है कि वो स्वयं त्याग करके सामने वाले को ऊंचा उठाना चाहता है। तो यहाँ आपकी कविता संगतकार मंगलेश डबराल जी की लिखी हुई पूरी होती है, और इसका जो प्रश्न अभ्यास है वो हम अगले ऑडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।